लोग मुझे याद करते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा मानते हैं। लेकिन वास्तव में मैं हूं केवल अनुभव। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के अंतिम दिनों के अनुभव सुनाऊंगा जिन्हें निराकार परमात्मा शिव ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। बात दिसंबर 1968 की होगी। आबू में सर्दी बहुत थी, जहां ठंड में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था, वहीं बाबा और यज्ञ के सभी गॉडली स्टूडेंट्स अपनी दिनचर्या में अडिक्ट थे। एक नया स्टूडेंट पहली बार बाबा से मिलने आया था। उसने अब तक केवल बाबा के बारे में सुना था, मधुबन के बारे में सुना था, निराकार परमात्मा शिव बाबा से योग पूरा था। उसे उत्सुकता थी कि देखूं तो जरा कौन सा वो भगीरथ है जिसे ज्ञान सागर परमात्मा ने चुना है। जब वो क्लास में आया तो बाबा ज्ञान मुरली चला रहे थे। पार्टी लेट आने के कारण वो स्टूडेंट पीछे जाकर बैठा। मन की बात उसने किसी से कही तो नहीं, लेकिन मुझसे छिपी भी नहीं, क्योंकि मैं ही तो वो सारे अनुभव हूँ।
बाबा, बाबा मैं आ गया। बाबा मुझे देखो एक बार, बाबा मुझे एक बार देखो। कितने जन्मों से आपको ढूंढ रहा था, अब मिला तो भी पीछे बैठा हूँ, दिख भी नहीं रहा आपको।
इतने में बाबा दूर बैठे उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं,
बच्चे तो सदा बाबा के दिल में बैठे हैं। जो बच्चे बाबा को दिल में बिठाते हैं ना, वो बाबा के दिल में बैठे होते हैं। फिर चाहे यहाँ सामने हो या पीछे, दिल में तो सब आगे ही आगे है ना।
इतना सुनना था कि उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ के जाकर बाबा की गोदी में सर रख कर रोने लगा। बाबा ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बच्चे बच्चे कहते हुए उसे खूब प्यार दिया और फिर उसे अपने सामने बिठा लिया।
कमाल है शिव बाबा की। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उनके 60 वर्ष की आयु में चुना, लेकिन आज भी 93 वर्ष की आयु में भी बिना आधार एकदम योगी राज की बैठक है।
सिर्फ यही नहीं, आने वाले कुछ दिनों में उसने देखा कि बाबा यज्ञ प्रमुख होते हुए भी यज्ञ का हर एक छोटा बड़ा काम खुद करने से हिचकते नहीं थे। दिनों में बाबा बिल्कुल स्वीट साइलेंस में शिव बाबा की याद में खो जाया करते थे, इतना कि उन्हें आसपास होने वाला शोर या आवाज का कोई भान नहीं होता था। एक बार बाबा मग्न अवस्था में बैठे थे कि ब्रह्मा कुमारी कैलाश बाबा से मिलने मधुबन आई हुई थी। जब वो बाबा के कमरे में गई तो उन्हें बाबा के फरिश्ते स्वरूप के वाइब्रेशन अनुभव हुए। बाबा ने उन्हें देखते ही बोला,
बच्ची आप तो संदेशी हो, एक बार वतन में देख कर आओ कि वतन वाले बाबा और इस बाबा में कितना फर्क है।
दरअसल बात कुछ वर्ष पहले की है, जब कैलाश बहन ने बाबा को बताया था कि सूक्ष्म वतन में जो आकारी ब्रह्मा बाबा हैं, वो बहुत सुंदर है, उनकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। तब से बाबा ने भी खुद के पुरुषार्थ की तीव्रता को बढ़ा दिया था। बाबा के प्रेमपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर बहन वतन गई। जब वापस आई तो बोली,
बाबा वतन में तो आप ही थे।
नहीं बच्ची, बाबा तो यहाँ है ना। बाबा वतन नहीं जा सकता, इसीलिए तो आपको भेजा।
हाँ बाबा, लेकिन वतन में भी आप ही थे, एकदम ऐसे ही, लाइट ही लाइट, सुंदर ही सुंदर।
बाबा ने सुना और धीरे से बहन को कहा,
बच्ची ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं है।
बाबा को भी अपने अव्यक्त होने के इशारे मिल रहे थे और अनेक अन्य आत्माओं को भी। पुष्पाल दादी जब मधुबन में इन दिनों में थी तो देखा कि बाबा और दो दादियां क्लास से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि दोनों दादियां तो जमीन पर चल रही हैं, लेकिन बाबा जैसे जमीन से धीरे धीरे 2-3 फुट ऊपर ही चल रहे हैं। दादी ने देखा और एकदम आश्चर्यवत होकर एक टक देखती रही। उनको लगा जैसे बाबा फरिश्ते के समान उड़ते जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो दौड़ कर गई और बाबा को पकड़कर कहने लगी,
बाबा अब मत जाओ, यहीं रहो ना।
हाँ बच्ची, बाबा तो यहाँ ही है, आपके पास है बच्ची।
बाबा तो पास है ही और सदा रहेगा। उनके तो वो और करीब होते हैं जो दिन रात शिव बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। ब्रह्मा बाबा उसी प्यार की पालना देने के निमित्त थे, वो बच्चों से दूर कैसे हो सकते थे। ये अनुभव लगभग बाबा के अव्यक्त होने से एक हफ्ते पहले का है। दिल्ली से जगदीश भाई, जिन्हें प्यार और सम्मान से बाबा भी भाई साहब कहते थे, बाबा से मिलने आए थे। कोई बात उनके दिल में थी जो कोई नहीं जानता था, मैं जानता था।
बाबा कब पहुंचूंगा आपके पास? बस अब नहीं रह जाता, न जाने क्यों मन बार बार कह रहा है कि बस अब और आपसे दूर नहीं रह सकता।
बच्चे भले पधारे, बाबा भी बच्चे को देखना चाहता था। बोलो बच्चे कैसे आना हुआ?
बाबा बस मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ कुछ दिन, मुझे आपसे बिल्कुल अलग नहीं रहना है, बस बाबा और कुछ नहीं।
लेकिन बच्चे वो किताब छपवानी है, बहुत जरूरी है, आप आज रहो लेकिन कल ही जाकर उस किताब को छपवाओ।
जी बाबा, सेवा तो जरूर होगी, लेकिन मन अजीब सा महसूस कर रहा है।
बच्चे बाबा चाहते हैं आप उस सेवा को करो।
लेकिन बाबा,
मन शिव बाबा में लगा रहे तो मन कभी परेशान नहीं होगा, यहाँ सब ठीक है और ड्रामा अनुसार ठीक ही होगा, आप सेवा पर जाओ।
दोनों एक दूसरे के दिल को जानते थे, लेकिन दोनों ने वही किया, सेवा। ईश्वरीय कायदे और डायरेक्शन का सम्मान कितना कठिन होता है। कर्तव्य और मर्यादा को निभाने के लिए अपनी भावनाओं को समेट लेना। जब भावनाएं इतनी शुद्ध और निस्वार्थ प्यार की हो, तब तो और ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल को भी बाबा ने सरल कर दिखाया। बच्चों को बाबा से बहुत बहुत प्यार था। बाल्यकाल से उनको ही अपने पिता के रूप में देखा था। और सच बताऊं तो बाबा को भी सभी बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे और बाबा एक दूसरे के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में सेवा अर्थ थी, लेकिन मास में एक बार मधुबन आ ही जाती थी। बात है 1969, 17 जनवरी शुक्रवार की। दादी एक छोटा सा ग्रुप लेकर मधुबन आई थी बाबा से मिलाने। ग्रुप 16 जनवरी को ही वापस चला गया।
बाबा, हम जल्दी आएंगे।
दादी को एक दिन और रुकना था, क्योंकि आबू में जो म्यूजियम है उसकी बिल्डिंग को खरीदने की कुछ बात चल रही थी। वैसे तो बाबा दादियों को कभी मधुबन में एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं देते थे। हमेशा कहते,
बच्चे आप सेवा पर हो, छुट्टी पर नहीं। बादल बनकर आए हो, ईश्वरीय प्यार का जल भरो और जाकर तड़पती हुई आत्माओं पर बरसो। गो सून एंड कम सून।
तो दिल होते हुए भी दादियां कभी मधुबन में बाबा के साथ एक्स्ट्रा नहीं रुक पाती थीं। इधर दीदी मनमोहिनी इलाहाबाद मेले की सेवा पर गई हुई थी, तो बाबा के संग रहने वाली इशु दादी ने दादी प्रकाशमणि से कहा,
दादी, दीदी इलाहाबाद में है और बाबा की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो आप रुक जाओ ना।
ईशु दादी, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, पर बाबा तो सेवा पर एब्सेंट नहीं होने देंगे ना।
हाँ, सच ही था, बाबा कभी बच्चों को सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं रखने देते थे, क्योंकि बाबा खुद अपने अनुभव से जानते थे कि सेवा से सुख और संतुष्टता बहुत सहज प्राप्त होती है, क्योंकि सेवा के दौरान शिव बाबा की याद बुद्धि में नेचुरल रहती है। सत्रह जनवरी को दादी ने बाबा को बताया कि
आबू म्यूजियम का जो मकान आपको पसंद आया था, वह मकान मालिक भाई हमें मकान देने को राजी हो गया है, तो इसकी लिखा पढ़ी जल्दी कर लेंगे।
बच्ची, जल्द नहीं कल ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
जी बाबा।
दादी बॉम्बे वाले रमेश भाई को फोन करने जा ही रही थी कि बाबा ने बोला,
बच्ची बॉम्बे में कोई जरूरी सेवा है क्या?
नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ अर्जेंट नहीं है।
बच्ची आप रुक जाओ, अभी कुछ समय तो आपको इधर ही रहना है।
ये शब्द सुनना तो हर कोई चाहता था, पर सेवा के कारण कभी सुना नहीं था। लेकिन आज इन शब्दों को सुनकर दादी के तो पैर धरती पर नहीं थे। दादी जल्दी गई और बॉम्बे वाले रमेश भाई को फोन पर कल के कल ही मकान को फाइनल करने का बाबा का संदेश दे दिया। अगला दिन 18 जनवरी शनिवार। सुबह से ही बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। दादी जब बाबा के कमरे में गईं, तब देखा बाबा शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद बाबा के मुख मंडल पर असीम तेज था। दादी को देखा तो बाबा उठकर क्लास की ओर जाने लगे।
बाबा, आज आप यही रुक जाइए। आपने जो ज्ञान की पॉइंट सुनाई थी ना, मेरा मन है मैं क्लास के साथ उसका चिंतन करूं। आज आप थोड़ा आराम कीजिए।
दादी को अंदर से मालूम था कि बाबा रुकने वाले नहीं, क्योंकि 1936 से लेकर अब तक बाबा ने एक दिन भी क्लास किसी भी कारण से मिस नहीं की थी। उन्हें थोड़ा अलग महसूस हुआ जब बाबा ने कहा,
ठीक है बच्ची, भले।
दादी ने बाबा को धीरे से कहा,
बाबा डॉक्टर को बुला लेते हैं, वह आकर सिर्फ थोड़ा सा आपको देख जाएंगे।
नहीं बच्ची, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बाबा सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, लौकिक डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप जाओ, क्लास में देर नहीं होनी चाहिए।
बाबा की आज्ञा मानकर दादी क्लास में चली गई। क्लास खत्म होने के बाद आकर देखा तो बाबा के बगल में सभी सेवा केंद्रों के बच्चों की चिट्ठियों का अंबार लगा हुआ था। दादी ने बाबा से कहा,
बाबा आज रहने दीजिए ना, कल लिख दीजिएगा जवाब। आप थोड़ा आराम कर लीजिए।
बाबा लिखते ही जा रहे थे और सिर्फ सर हिलाया। दादी ने देखा बाबा एकदम सीरियस होकर पत्र लिख रहे थे। फिर से दादी ने प्यार से बोला,
बाबा आप आराम कर लीजिए।
नहीं बच्ची, ये बहुत आवश्यक है। आज बाबा को सारी चिट्ठियों का जवाब देना ही है। बच्ची बाबा ठीक है, आप नाश्ता कराओ, फिर बाबा और आप सैर पर जाएंगे।
जी बाबा कहकर दादी चली गई और बाबा चिट्ठियों को गौर से पढ़ने लगे।
देखा है तुमको बाबा, रूह को प्यार करते।
किसी सेवा केंद्र की एक चिट्ठी में बहुत सारे बच्चों ने बाबा को याद प्यार दिया था। उस चिट्ठी के अंत में हर एक का नाम साइन किया हुआ था। बाबा ने उत्तर में एक एक बच्चे का नाम लिखा और फिर याद प्यार और नमस्ते लिखा। बाबा को मन में था कि एक भी बच्चे का नाम नहीं छूटना चाहिए, इसलिए बाबा बार बार उनके नाम मिला रहे थे। एक एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार। इतना संवेदनशील और इतनी विनम्रता, इतना प्यार करेगा कौन?
तुमने दुलार करके।
थोड़ी देर बाद दादी आई तो बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा और पांडव भवन के कोने कोने में ले जाकर दिखा रहे थे। वैसे तो दादी को चप्पा चप्पा मालूम था, लेकिन फिर भी बाबा सैर करा रहे थे और वो भी छोटी बच्ची की तरह इस अनुभव को सहज रही थी।
ज्ञान का पंख लगा कर उड़ना सिखाते देखा।
बच्ची बाबा यहाँ बच्चों के लिए कमरा बनाने चाहते हैं। यहाँ अच्छी सी नानी होनी चाहिए, यहाँ छत डलवानी होगी, बारिश में बच्चों को भंडारे तक जाते हुए थोड़ा भीगना पड़ता है, तो छत डाल देंगे बच्चे। या बाबा बच्चों के लिए बड़ा हाल बनाएंगे, जहाँ बैठकर सब बच्चे ज्ञान के सागर शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। देखो बच्चे, यहाँ दाल रखते हैं, यहाँ चावल रखते हैं।
तबीयत के कारण बाबा भंडारे में करीब 3 दिन से नहीं गए थे, नहीं तो रोज बाबा भंडारे का चक्कर जरूर लगाते थे और हाथ भी बटाते थे। बाबा दादी को भंडारे का सब कुछ दिखा रहे थे। भोली दादी को पता चला बाबा भंडारे में आए तो वो तुरंत दौड़ कर आई और भावुक होकर बोली,
बाबा आप भंडारे में 3 दिन बाद आए हैं, मैं आपसे मिल भी नहीं पाई बाबा।
तभी बाबा ने भोली दादी का हाथ पकड़ा और लंबी दृष्टि दी और कहा,
बच्ची आज जितना मिलना है बाबा से मिल लो, अपनी पूरी दिल से बाबा से मिल लो बच्ची। बाबा भी है, इधर ही बाबा से मिल लो। भोली बच्ची, वाह बच्ची। बच्ची देखो, अनाज आदि खत्म होने से पहले ही भोली भंडारी से पूछना चाहिए कि सब कुछ है।
ऐसे बाबा दादी को हर बारीक से बारीक चीज दिखा रहे थे। क्यों ये राज तो सिर्फ बाबा जाने और शिव बाबा जाने।
को प्यार करते।
अहमदाबाद से रमेश भाई का फोन आया कि शाम को 4 बजे आबू म्यूजियम वाले मकान की डील फाइनल हो गई है और वो शाम को 6 बजे वाली आगरा लोकल से आबू आ रहे हैं। ये आबू म्यूजियम का मकान बाबा के प्रेरणा से लिया हुआ यज्ञ का पहला मकान था। दादी ने बाबा को खबर दी तो बाबा मुस्कुराए और बोले,
अच्छा है बच्ची, आज रात्रि क्लास जल्दी करनी है, डिनर जल्दी करना चाहिए सबको, बाबा को बच्चों से मिलना है।
बाबा आज आप रेस्ट कर लीजिए।
नहीं बच्ची, सवेरे भी बाप बच्चों से नहीं मिले तो बच्चों की बुद्धि चलती है, आप जाओ जल्दी भोजन करने को कह दो सबको।
शाम को बाबा क्लास में काफी देर तक केवल दृष्टि देते रहे, मानो एक एक में बल भर रहे हैं, एक एक को आधार स्तंभ की मजबूती दे रहे हैं। फिर बाबा ने मधुर महावाक्य चलाए,
अभी खुशी का पाया चढ़ना है, बस याद की याद करते हैं, फिर जितना जो याद करे खुशी का पाया चढ़ता जाएंगे। सब में अपन के गुण भी होते नहीं, वो गाय जाते नहीं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान कहते, भगवान कहते नहीं मेरी गिलानी बहुत करते, मैं आके मित्र बनता हूँ तो गाय भी जाता नहीं। मीठे मीठे से कर लेते रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप और दादा का दिल जान से कहते इनसे याद तारकपुर नहीं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों के तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों तो कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी में
रोज बाबा रात्रि क्लास के बाद गुड नाइट कहते थे। उस दिन बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे बाबा छुट्टी लेते हैं। सबको अलग तो लगा लेकिन इतना ध्यान किसी ने नहीं दिया। फिर बाबा उठकर जाने लगे। बाबा सब बच्चों को इतना सम्मान देते थे कि कभी पीठ करके क्लास से नहीं जाते थे, हमेशा पीछे पीछे चलते हुए जाते थे। आज भी बाबा वैसे जा रहे थे, लेकिन दरवाजे पर रुक गए, फिर से लंबी दृष्टि दी और तीन शब्द कहे,
बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
ये तीन शब्द आध्यात्मिक उन्नति का बीज है। रोज कई बच्चे बाबा को गुड नाइट करते थे। बाबा की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी तो दादी प्रकाशमणि, दादा आनंद किशोर और कुछ भाई बहनें बाबा को जल्दी गुड नाइट करने गए। कमरे में उन सब ने देखा कि बाबा शिव बाबा की याद में एकदम जैसे कि मग्न अवस्था में है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चल रही है। कमरे में अशरीरीपन का एक चमत्कारी वायुमंडल था। हरेक को शरीर का भान ही नहीं रहा। कुछ समय बाद बाबा ने इशारे से दादी को अपने सामने बुलाकर बिठाया। दादी बाबा की दृष्टि में देख रही थी। बाबा दृष्टि से जैसे मानो सारी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे थे। फिर बाबा ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। दादी को अपने अंदर करंट की अनुभूति होने लगी। दादी ने बोला,
बाबा बाबा बाबा।
बाबा तो निःशब्द केवल हाथों में हाथ देकर दृष्टि दे रहे थे। दादी ने आनंद किशोर को डॉक्टर को बुलाने का इशारा दिया। कुछ सेकंड की बात होगी, मानो 10 सेकंड या 20 या कितना, लेकिन ऐसा लगा मानो कितने सालों से दादी बाबा के साथ है। देखते ही देखते बाबा का हाथ ढीला हो गया और आत्मा पंछी शरीर के बंधनों को छोड़ उड़ गई। बाबा के शरीर को लिटाया। दादी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, सब कुछ एकदम अचानक हुआ, लेकिन अंदर एक अद्भुत शक्ति थी जो कह रही थी, बाबा तो अभी भी साथ है। साथ तो है ही। कई बार बाबा ने अपने बच्चों को शब्दों से, इशारे से, अपने कर्म से एहसास कराया था कि बाबा का साथ उनके ऊपर मां की स्नेह की छाया समान सदा बना हुआ है और रहेगा ही। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि प्राण पंछी तो उड़ गए। सुनकर बड़े ही शांत भाव से दादी ने कहा,
रामा की भाभी, बाबा तो अभी भी साथ ही है।
डॉक्टर भी अचंभित थे कि इतना प्यार करने वाले बाबा के अचानक चले जाने से भी इनके बच्चे ऐसे कैसे स्थिर हैं? उत्तर तो मैं जानता हूं। वर्षों की तपस्या, शुद्ध ईश्वरीय प्यार और सत्य ज्ञान की पालना, यही आधार था उस स्थिरता का। दादी ने तुरंत सबको टेलीग्राम टेलीफोन किया। हरेक को दादी की स्थिरता देखकर आश्चर्य हो रहा था। ऐसा लगा जैसे बाबा ही अपनी शक्ति से सब करा रहे हैं। ड्रामा की भावी बाबा अव्यक्त हो गए। ये वाक्य दादी ने उस दिन न जाने कितनों को सुनाए होंगे। अपने प्राण प्यारे बाबा के अव्यक्त होने का समाचार न सुनने वाले के लिए न ही सुनाने वाले के लिए आसान होगा, लेकिन मैंने देखा कि फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा जैसे हर आत्मा को अब भी प्यार और शक्ति भर रहे थे। ना सिर्फ दादी किंतु प्रत्येक ब्रह्मा कुमार कुमारी को मैंने बड़ा स्थिर और अचल देखा। बाबा के अचानक चले जाने से सब थोड़ा हैरान तो थे, लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे सवालों ने एक को भी हिलाया नहीं, क्योंकि हर एक का दिल जानता था कि परमपिता परमात्मा दिलाराम शिव बाबा विश्व परिवर्तन करने आए हैं, और जब तक विश्व परिवर्तन नहीं होता ये कार्य चलता रहेगा। बाबा तो अंत तक हर बच्चे का साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है, और उसको बांधा है बच्चों के प्यार ने। आज भी वो दिन मुझे नहीं भूलता। मैं जानता हूं विश्व कल्याण का महान कार्य शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा द्वारा बच्चों से करा रहे हैं। बच्चे तो केवल हाथ हैं।